खुदावंद आपको बरकत दे। जो बहन भाई खुदावंद के कलाम को पढ़ सकते हैं वो कलाम 31 को मेरे साथ खोलें। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखना शुरू करें, खुदावंद की तमजीद हो कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया ताकि उसकी हजूरी में आए। खुदावंद की हजूरी में खुदावंद कहता है कि मुबारक हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे, जिस्मानी रोटी के बारे में बात नहीं खुदावंद कर रहा, रूहानी रोटी के बारे में। मुबारक हैं वो लोग जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो मेरी हजूरी में आते हैं, खुदावंद कहता है मैं उनको शेर करूंगा। इससे पहले कि जैसे हमारे मामूल के मुताबिक खुदावंद के कलाम के हुक्म के मुताबिक इफ़सियों 5 बाप उसकी 18 आयत के मुताबिक, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हम किस तरह रूह से मामूर हो सकते हैं? ये आयत खुदावंद का बंदा पालूस जब लिखता है तो इसमें वो हुक्म देता है कि हर एक ईमानदार को रूह से मामूर होने की जरूरत है। लेकिन किस तरह? सादा सा हाल है, जब भी खुदावंद की हजूरी में भूख और प्यास रखते हुए उसके बारे में सीखने के लिए आए तो पहला यूहन्ना 1 बाप उसकी 9वीं आयत के मुताबिक अपने आप को खाली करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं, जब हम भूखे आते हैं, तो वो अपने कलाम से शेर करता है। इसलिए हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है। और खुदावंद का कलाम जिंदा है। चंद लम्हों के लिए इन बातों पर गौर करें कि क्यों हमें मामूर होने की जरूरत है, ताकि उसके कलाम को समझने वाले बने। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं, सेत यानी के मसीह यसू में हमारी हालत और हमारा मकाम कि उसने हमें लेपालक बेटे और बेटियां ठहराया है। और पिछले दिनों में हमने सीखा था और मुसलसल सीख रहे हैं इफ़सियों 2 बाप उसकी हमने 7वीं आयत में से उसकी फजल की उस बेनहायत दौलत के बारे में, दुनियावी दौलत के बारे में नहीं, फजल की उस बेनहायत दौलत के बारे में सीखा था। आज मेरे साथ देखे जो भाई बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं, इफ़सियों 2 बाप उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन 8वीं आयत से 3 बातों को आपके साथ शेयर करूंगा जो खुदावंद में मैंने सीखी हैं। इफ़सियों 2 बाप उसकी 8वीं आयत को देखें मेरे साथ। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आज के दिन हम खुदावंद के फजल के बारे में सीखेंगे कि दर हकीकत उसका फजल क्या है। उसके बारे में तलीम लेंगे कि ईमानदारों का अकीदा उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में नजरिया क्या होना चाहिए खुदा के फजल के बारे में। जैसा कि ईमानदारों को, हर एक ईमानदार को, यानी कि जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसको खुदा बाप ने मसीह के साथ आसमानी मकामों पर क्या उसके साथ बिठाया है, उसका एक मकाम, एक पहचान, उसकी एक हालत है, जिसके लिए पालूस रसूल कहता है कि हम इस जहां के नहीं बल्कि उस जहां के हैं जहां से हम आए हैं। वो आसमानी मकामों के बारे में बात कर रहा है, जहां के हम सही रहैशी हैं, जहां से हमारी सही, हमारी जिंदगी का शुरू होता है और जिंदगी का आखिरी वक्त वहां पर गुजरेगा। खुदा के फजल के बारे में चंद एक ख्यालात। खुदा का फजल यह है कि खुदा ने बनी नू इंसान के लिए अपनी मर्जी से, यानी कि खुद मुख्तारी के साथ, यीशु मसीह के उस काम के वसीला से जो उसने सलीब पर किया, उसकी बुनियाद पर वो हर तरह के गुनाहों और कसूरों को माफ करता है और اس نے معاف کیا اور اپنے بیٹے کے کفارے کو وہ ہر وقت یاد کرتا ہے. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اپنی محبت بنی نوع انسان پر ظاہر کی. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے وہ تحفہ اپنا بیٹا اس دنیا میں دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے صرف ایمان کے باعث. کسی بڑے کام کو کرنے کی ضرورت نہیں, سادہ سی بات ہے, اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور خدا کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس دشمنی کو صلیب پر مٹا دیا. کون سی دشمنی؟ جو انسان اور خدا کے درمیان تھی, یعنی کہ وہ دوری کو, اس دشمنی کو مٹا دیا اور انسان کی کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ صلح کرا دی اور خدا کے غصے کو ٹھنڈا کیا. یہ وہ خدا کا فضل ہے جس میں خدا محبت سے بھرا ہوا, محبت سے بھرا ہوا اور پیار سے اور بڑے اختیار کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہے تاکہ بنی نوع انسان کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے. کیونکہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ کو وہ تین باتیں سکھاؤں جو آج ہم سیکھنے والے ہیں. فلپیوں اس کا دو باب اس کی چھٹی آیت سے آٹھویں آیت تک میرے ساتھ دیکھیں. فلپیوں دو باب, اگلی کتاب, اگلا خط جو پالوس کے افسیوں کے خاص سے اگلا خط, دو باب اس کی چھٹی آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں پر پالوس رسول یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, یسوع مسیح جو خدا تھا مکمل خدا کی صورت پر تھا. خدا یعنی کہ تثلیث کا تیسرا کیا ہے؟ ممبر ہے. اس نے کیا کیا؟ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے بنی نوع انسان کے لیے, جس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور اس زمین پر اتر آیا تاکہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح کرائے. اور ہم نے یونانی کا ایک لفظ دیکھا تھا پچھلے دنوں میں, آج وہ آپ کے ساتھ پھر دہرانا چاہتا ہوں. پسٹس, پی آئی ایس ٹی آئی ایس, پسٹس کا مطلب ہے ایمان, بھروسہ, یقین, زندہ امید, یا اس کا مطلب ہے کہ اس چیز پر بھروسہ کیا جائے جو مسلسل طور پر ہماری مدد کر سکتی ہے. اور ہم نے اس کی جو گہرائی کے بارے میں سیکھا تھا یہ تھا کہ خدا کے کلام کو, ایمان کے اس کلام کو جو ہم نے سنا ہے, مکمل طور پر مسلسل طور پر اپنی روحوں میں سکونت کرنے دینا. ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے اور بات ختم, نجات مل گئی. یہ درست ہے کہ ایمان کے باعث نجات ملتی ہے, لیکن پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مسلسل خدا کے روح کو, مسلسل خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں دعوت دینا اور سکونت کرنے دینا. جیسے روح کو دعوت دینا کہ مکمل طور پر وہ ہمیں مامور کرتا رہے ہر روز, اسی طرح کلام کو اپنی زندگی میں سکونت کر دے دینا. اور زندگی میں ہر روز اس کلام کو بھوکھوں اور پیاسوں کی طرح, بھوکھوں اور پیاسوں کی طرح اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ متی پانچ باپ اس کی چھٹی آیت کے مطابق, مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ کیے جائیں گے. ہمیں ہر روز اس کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ دنیا کے حالات ہیں, بہت سے لوگ ऐसी भूख और प्यास नहीं रखते। लोगों की जिंदगी में भूख और प्यास किसकी है? दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की चीजों की भूख और प्यास है। लेकिन खुदा कहता है कि मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मैं उनको असूदा करूंगा, यानी कि सैर करूंगा। पहली बात गौर से सुने, जो पहली बात है, ईमान को अपनी जिंदगी में मुसलसल तौर पर इस्तेमाल करें। ईमान को अपनी जिंदगी में मुसलसल तौर पर इस्तेमाल करें। ईमान के बायस हमको क्या? खुदा ताला की वो बख्शिश यानी के निजात मिली, यानी के हमेशा की जिंदगी हम आखिर तक उसके साथ जिएंगे। जैसा कि इफिसियों 2:8 आयत में तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। और दूसरी बात, और इस जमीन पर फतामंद जिंदगी गुजारना, फतामंद जिंदगी गुजारना। ईमान हमें बचाता है और ईमान हमें सिखाता है कि फतामंद जिंदगी गुजारें। मेरे साथ हवाला देखे, पहला यूहन्ना उसका 5:4 से आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 5:4, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। ये वो ईमान के बायस हमें फतह, और हम दुनिया पर गालब आते हैं, यानी कि दुनिया की तरीकी की सारी बातों पर, झूठों पर, हर तरह की चीज पर। वो हमें क्या ठहराता है? फाते ठहराता है। और ईमानदारों को जरूरत है कि फतह मंदी की जिंदगी इस जमीन पर बसर करें। 5 आयत में क्या लिखा है? दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सवाए उस शख्स के जिसका ईमान यह है कि यीशु खुदा का बेटा है। अगर आप आज दुनिया पर गालब आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई जंग लड़ी है, या आप हिटलर हैं, या कोई और सूरमा है हिस्ट्री का। नहीं, आप दुनिया की उस तरीके पर किस तरह गालब आए हो, किस तरह फतामंदी की जिंदगी गुजार सकते हो कि जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो फतामंदी यीशु मसीह में है और सिर्फ ईमान के बायस है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। तुमको फजल ही से, ईमान के बायस फजल ही से निजात मिली है, यानी कि खुदा तक हमारी रसाई हुई है, खुदा तक हमारी पहुंच हुई है। खुदा के साथ जो दूरी थी वो दूरी नजदीकी में बदली है। और इसमें बहुत सी बातें सीखने वाली हैं। तकरीबन 40 नेमतें हैं जब हम ईमान लाते हैं तो ईमानदारों के अकाउंट में जमा होती हैं, यानी कि उस ईमानदारों के खाता में जमा होती है। 40 किस्म की नेमतें हैं, इसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। दूसरी बात, ईमान में कायम रहना। मसीही ईमानदार के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो हर लम्हा में, जिंदगी के हर वक्त में, हर मोड़ पर अपने ईमान पर कायम रहे। हालात कैसे भी हो, कैसी भी मुश्किलात हो, सारा कुछ बुरी बातें पेश आ रही हो, नुकसानात हो रहे हो, कैसा भी जिंदगी का लम्हा आ जाए, ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। और ये ईमानदारी ईमानदारों की जिंदगी में बहुत ही जरूरी जोज है, जो होने की जरूरत है। और इसके लिए अब्रानियों का मुसन्नफ उसका 11:1 में वो बहुत ज्यादा तौर पर कहता है, इसीलिए यहां पर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जब आप देखते हैं कि घर के हालात, कारोबार के हालात, दुनिया के हालात, इर्द गिर्द के पड़ोसियों के हालात बुरे जा रहे हैं, तो हम अपने ईमान पर कायम रहते हुए किस पर अपनी उम्मीद रखते हैं? जहां से हमारी कुम्मक आती है, जहां से हमारा जोर आता है, जो सारी दुनिया को शेयर करता है, यानी कि खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। उसी से हमारी उम्मीद है, और ये उम्मीद जिंदा उम्मीद है जो अनदेखी चीजों पर, अनदेखी चीजों पर एतकाद करना ये ईमान है। आप में से किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनता और उस पर ईमान रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखो पर, दूसरा करंथियों 5:7 में। और इसीलिए बाइबल कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, यानी कि पिस्थिस यूनानी का जो लफ्ज है, मुसलसल तौर पर उस जिंदगी के हयात के चश्मा के साथ राबता रखना, मुसलसल तौर पर उसके कलाम को अपनी जिंदगी में सकूनत करने देना। हमारे ईमान की उम्मीद क्या है? अगर आपसे लोग पूछें कि आप क्यों ये सुपर ईमान रखते हो, आपका मकसद इस जमीन पर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे हमारे पादरी बताते हैं। इसीलिए जरूरत है हर रोज उसके साथ रफाकत रखने की। मेरे साथ एक हवाला देखें, खुदावंद का बंदा पत्रस, पहला पत्रस उसका 3:15 में वो कहता है कि ऐसे हालात आएंगे कि लोग ऐसी बातें बनाएंगे, लोग ऐसे मौजू आपके सामने पेश करोगे, लेकिन वो कहता है कि हमारी उम्मीद क्या है, हमारी उम्मीद की वजह यानी कि हमारे ईमान की बुनियाद क्या है, किस पर हम कायम हैं। देखें 15 को, यहां पर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। यहां पर वो ईमान की बात कर रहा है कि मसीह को जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तहिद रहो, मगर हमल और खौफ के साथ, बड़े तहम्बल के साथ। हमारी उम्मीद की वजह यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और उसने कहा कि मैं जाता हूं और फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि उस आसमानी मकामों में हमेशा की जिंदगी गुजारो। हमारे ईमान में कायम रहने की वजह यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और मुकम्मल खुदा है, और उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तुम्हारा ईमान किस पर है? हमारा ईमान इस पर है कि यीशु मसीह हमारी वो चितान है, हमारा वो किला है जो हमें बचा सकता है हर तरह के दुखों से, जिस्मानी और रूहानी बरकत से शेर करने की कुदरत और ताकत रखता है। ईमान की बुनियाद हमें उस अकलमंद आदमी की तरह देखने की जरूरत है, मत्ती 7:24 के मुताबिक, कि मुबारक है वो लोग जो मेरी बातें सुनते और उन पर अमल करते हैं। वहां पर यीशु मसीह बात करता है एक अकलमंद शख्स के बारे में जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और हमारी बुनियाद उस चट्टान पर रखी गई है जो जिंदा चट्टान है, जिससे जिंदगी का पानी जारी होता है, और वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, और इस चट्टान को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए ईमानदारों को जरूरत है कि ईमान में कायम रहें। हमें बेवकूफ आदमी की तरह रेत पर अपना घर बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि चट्टान पर जिस पर हमारा ईमान है उस पर हमारा घर बना हुआ है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर कुर्बान कर दिया। यहां पर यीशु मसीह की वो कुर्बानी, वो नजर, उसने अपने आप को वकफ कर दिया, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबा हो गया और खादम की सूरत इख्तियार की। यहां पर वो यीशु मसीह की अपनी मर्जी नजर आती है कि उसने अपने आप को दुनिया के गुनाहों के लिए वकफ कर दिया ताकि बाप की मर्जी को पूरा करे, और उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को اس کی مرضی کے وقف کر دیا۔ بائبل مقدس پرانے عہد نامہ میں کہتی ہے، خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ہارون کی بہن مریم نے اپنی دف کو خداوند کے جلال اور پرستش کے لیے وقف کر دیا۔ خروج 4 اس کی پہلی آیت سے 17 آیت تک خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے کہا کہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو خداوند کے لیے وقف کر دیا تاکہ خدا اسے استعمال کرے۔ اور اسی طرح داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پہلا سیمول اس کا 17 اس کی 50 آیت سے دیکھیں تو داؤد نے اپنی زندگی کو، اپنی اس فلاخن کو جسے گلیل کہتے ہیں، اور کچھ پتھروں کو خداوند کی نظر وقف کر دیا تاکہ خدا ان کو استعمال کرے، خدا ان کو استعمال کرے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کو اس دنیا کے لیے وقف کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ ان 3 شخصیات کو دیکھتے ہیں، مریم نے اپنی دف کو، موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو، یا داؤد نے اپنے فلاخن اور سم کچھ پتھروں کو۔ آپ آج کیا خداوند کی نظر کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر کیا، آپ کیا اس کی حضوری میں نظر اور وقف کرتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کی طرح اپنا ٹائم دنیا کی چیزوں میں گزارنے کی یا وقف کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی طرف مت دیکھیں کہ وہ بہت سے اونچی شہرت حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے لوگ روپیہ پیسہ حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی ہر سہولت ان کے پاس موجود ہے، بہت سے مقام کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اپنا وقف کیا ہوا ٹائم صرف دنیا کے لیے وقف کر رہے ہیں، نہ کہ خداوند کے لیے۔ آج آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ اپنے خداوند کے لیے اس کے حضور کیا وقف کرتے ہیں؟ آج اس سوال کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کے درمیان میرے ابو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کیا اور بت پرستی کو چھوڑ کر آج اس جگہ پر موجود ہیں۔ بھائی ذوالفقار نے اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کیا، کسی دنیا کی چیز کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے۔ اور نہ مت سوچیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں بول نہیں سکتا، خدا نے کہا کہ میں تجھے استعمال کروں گا۔ یرمیا نے کہا کہ میں بچہ ہوں، خدا نے کہا میں تجھے استعمال کروں گا۔ داؤد کی طرح ہمیں، داؤد نے جب جاتی جولیت کو کتے کی طرح مارا تو اس نے کوئی 50 یا 80 کا نہ تھا، وہ بچہ ہی تھا، زیادہ سے زیادہ 16 کا ہوگا اندازہ ہے میرا، مجھے صحیح اس کی ایج کے بارے میں نہیں پتا۔ آج آپ کیا اپنے خداوند کے حضور وقف کرتے ہیں؟ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنا وقت اس کے حضور وقف کریں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر چرچ میں بہت دفعہ بھائی کو جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو وہ خود صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بہن نے کبھی سوچا ہے کہ کیا میں فارغ ہوں جا کر چرچ کی صفائی کروں؟ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے ٹائم کو، اپنے ان خوشیوں کو، اپنی دنیا کی چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر خدا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ مت دیکھیں یہ خدمت نہ تو روپے پیسے کے زور پر چلتی ہے اور نہ ہی یہ چل سکتی ہے۔ یہ خدمت اس لیے چلتی ہے کیونکہ خدا کے لیے ہم چند لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی نظر وقف کیا ہے۔ میں کوئی بہت حکمت والا یا کوئی بہت زوراور یا بہت علم رکھنے والا نہیں، بلکہ ایک حقیر اور ناچیز دنیا کا ٹھکرایا ہوا، اور خدا نے مجھے سربلند کیا۔ خدا نے داؤد کو سربلند کیا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کی نظر اپنی زندگی کی۔ آج آپ کے لیے سوال ہے، اس سوال کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ آپ نے اس کی نظر کیا کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، حزقیل اس کا 22वां बाप उसकी 30वीं आय से वहां पर क्या लिखा है। यहां पर खुदा बाप रब्बुल फवाज बात कर रहा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की, किनके दरमियान, वहां पर लोग बुत प्रस्ती, फालगिरी, जादूगिरी में, झूठी नबूतों में, दुनिया के कामों में मसरूफ हैं। और खुदावंद क्या कहता है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई शख्स मिले जो फसील बनाने में इस जमीन पर उसके लिए उस रखना में खड़ा हो, उस जगह पर खड़ा हो सके, यानी कि खुदा के सामने खड़ा हो सके, ताकि मैं इस वीरान, इस जमीन को वीरान ना करूं। लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिला। आज भी खुदा चाहता है कि कोई ना कोई उसके लिए आजाद मर्जी के साथ खड़ा हो। और आज हमने तीन बातें सीखी हैं, ईमान में अपने ईमान को हर वक्त अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जरूरी है ताफतामंदी जिंदगी गुजारने के लिए। दूसरी बात, ईमान में कायम रहना। और तीसरी बात, अपनी जिंदगी में ईमान के बायस अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी को उसकी नजर वकफ करना। आज देख सकते हैं कि आपके दरमियान बहुत से लोग नहीं हैं, और खुदा तलाश करता है ताकि वो उस मुल्क को वीरान और बंजर ना करे, लेकिन उसे कोई ना मिला कि उस रखना में उसके सामने खड़ा हो सके। आपको आपकी अपनी कलीसिया के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा उनके दिलों की आंखों को रोशन करे। इस पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से आज सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया उस बादशाहों के बादशाह ने। आप अपने आप को खाली करें, भूखों की मानद उसके पास आए तो वो आपको सेर करेगा। और जो कोई भूखा उसके पास आता है वह उसे कभी भी खाली नहीं लुटाता, क्योंकि लूका की इंजील उसके पहले बाप उसकी 53 आयत में लिखा है, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। मत देखें कि यहां आपकी कलीसिया में कुछ लोग दौलतमंद हैं या उनके पास दुनिया की शान और शौकत है, लेकिन वो खाली हैं, भूखे होने की जरूरत है खुदा के कलाम के लिए, रासबाजी के लिए भूखे, रासबाजी की पहचान के लिए भूखे हों। आज इस सवाल को अपने दिल में लेकर जाएं और उस पर सोचें कि हमने खुदा की नजर क्या किया है, अपनी जिंदगी, अपना वक्त, क्या जरूरत है इस जगह पर, क्या आपने वक्फ किया है कि जाकर लोगों को बताएं कि खुदावंद के कलाम की जरूरत है। ऐ सोने वालों जागो, मुर्दों में से जी उठो, हला हला कर उन्हें उठाने की जरूरत है। आए मेरे साथ खुदावंद के हुजूर झुकें। आसमानी बाप, तेरी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू दुनिया के हकीरों, ना चीजों को और वो चीजें जो दुनिया की नजर में बेकार हैं, जैसे कि लाठी, दफ और फलाखन, तू उन चीजों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और तूने हमें हकीरों, ना चीजों, नकम्मों और बेवकूफों को चुन लिया ताकि तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तेरे इस बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। आज का जो बीज इन सब ईमानदारों की जिंदगी में बोया गया है, कसरत से बरकत का बायस बने और खुदा बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सब के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं, और वो बरकत कि इनके दिलों की आंखों को रोज बा रोज खोल दे, ताकि हर तरह की हसदगिरी, हर तरह की झूठ, हर तरह के इब्लीस की गुमराही इस कलीसिया में से, इस बदन में से जो खुदावन खुदा इस जगह पर बसता है, दूर हो जाए, ताकि उस मुताबिक, उस बुलावे के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने जिसके लिए तूने बुलाया है। खुदा बाप सारा जलाल इनकी जिंदगियों में से तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन।